Om Shanti. 19th May 1977. साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसे क्यों कि हलचल होती है। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? प्रश्न चिन्ह। और महारथी की निशानी होगी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उसको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः ही ड्रामानुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप, और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हरेक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है, न चाहते हुए भी हरेक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सरकमस्टांस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है, ऐसा अनुभव होता है ना। जिसको आगे बढ़ना है उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अव्यक्त मुरली 19th May 1977 दादी जी से मुलाकात। साक्षी होकर ऐसे सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्यों की हलचल होती है। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर बताया बाबा ने, क्या अंतर है? महारथी अर्थात फुल स्टॉप और घोड़ेसवार अर्थात क्वेश्चन मार्क, कभी स्टॉप कभी फुल स्टॉप। तो इस अनादि ड्रामा में भी रूहानी सेना ने सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार उन्हों की स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लग जाता है। तो महावीर का मेडल हुआ फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप, और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे भी समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हरेक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है, न चाहते हुए भी हरेक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सरकमस्टांस ऐसे आएंगे, समस्याएं उन्हें ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसा समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करते जा रही है, ऐसा अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको क्या होगा, फिर चांस ही ऐसा मिल जाएगा। और किसका पीछे का नंबर है तो, जिसको पीछे का ही नंबर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो 77 की वाणी है, क्या सुना क्या करो? सबसे पहला वाक्य, साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई के भी पार्ट को देख। ऐसा क्यों कि हलचल न हो। यही अंतर है घोड़ेस्वार और महारथी में। क्या करना है? साक्षी होकर के सर्व आत्माओं का अपना पाठ देखना। उस दिन सुनाया था पांच तल। पहला, संसार को क्या समझना, रंगमंच, स्टेज, जिस स्टेज पर सारा खेल चल रहा है, सारे नाटक या ड्रामा चल रहा है। दूसरा क्या समझना,
पर्दा,
इस पर्दे पर मूवी चल रही है। तीसरा क्या समझना, मैदान, मैदान में खेल चल रहा है। चौथा, सीढ़ी, ये सीढ़ी देखना, इस सीढ़ी पर उतरना और चढ़ना चल रहा है। और पांचवा, चक्र, चक्र पर आत्माएं घूम रही है। संसार का अर्थ क्या होता है? संसार चक्र, संसार शब्द का अर्थ, संसार अर्थात शिल्प में संसार मतलब क्या, क्यों संसार शब्द कहा है संसार ने? भारत के ध्वज पर चक्र है एक, अशोक ने जब चक्र रखा था तो क्यों रखा था? चक्र संसार अर्थात चाक, संसार अर्थात चाक अर्थात चक्र अर्थात जो घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो जब अशोक ने देखा था, सम्राट अशोक ने, कि जीवन क्या है, जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, चक्र घूम ही रहा है, घूम ही रहा है सुख और दुख, तब उसने वो अपने स्तूपों पर अशोक चक्र बनाया था जिसको अशोक चक्र कहा गया और बाद में फिर वो भारत का चिन्ह बना। तो इस संसार को कैसे देखना है? स्टेज है जिस पर खेल हो रहा है, जिस पर क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। पर्दे पर मूवी चल रही है, मैदान में खेल चल रहा है और हम सब कौन है, देखने वाले हैं। ये एक दूसरी चेतना की उस दिन चार अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था मूर्छा, बेहोश, क्या कर रहे है पता नहीं। दूसरी अवस्था सेमी होश, कभी होश कभी बेहोश। चौथी अवस्था कंप्लीट अवेकनिंग, जागरण। और होश और जागरण के बीच एक तीसरी अवस्था है, वो है साक्षी, वो है साक्षी भाव। तो चेतना की यह चार अवस्था है। यहां बाबा कह रहे साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए भी कोई भी पार्ट को देख, क्या नहीं होना है? ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये प्रश्न आ रहे हैं। महारथियों की निशानी है कि फुल स्टॉप, घोड़ेसवार की निशानी है प्रश्न। प्रश्न उठ रहे तो एक ही दिन में एक ही व्यक्ति कभी महारथी और कभी घोड़ेसवार, कभी कभी फिर उसमें परसेंटेज, कभी ज्यादा महारथी कभी ज्यादा घोड़ेसवार, कभी प्रश्न ही प्रश्न, कभी कुछ कुछ देखकर कोई प्रश्न नहीं। साधना के चार आयाम है। पहला साक्षी भाव के की जो साधना है उसमें चार तल है। पहला तल है शरीर का तल, शरीर के साक्षी, शरीर में जो हलचल है उसके साक्षी। ये जो साधना है साक्षी भाव की, इस साक्षी भाव की साधना में सबसे पहला हमको साक्षी होना है किसका, अपने ही देह का। देह में क्या हलचल है, देह में कहा दर्द खींच रहा है, क्या खींच रहा है, बीमारी, उसकी साधना, उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास। एक है योग जिसमें हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते, ये एक साधना है। एक साधना है आत्मिक दृष्टि की साधना, एक साधना है आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की साधना। ये साधना हम बता रहे हैं साक्षी भाव की साधना। इसमें यदि कोई ये साधना करे तो सबसे पहला तल जिसे उसे देखना है वो है देह का तल। देह में क्या हलचल है, देह कितना स्थिर है कि हिलता ही रहता है, ये पैर की ये उंगलियां, अर्थात स्पीकर जो है वो स्थिर नहीं है। अगर ये उंगलियां हिल रही है तो ये जो है ये हलचल की निशानी है। हाँ वो दूसरा, अगर योग कोई भी शरीर में हलचल बहुत हो रही है तो वो जो निशानी है स्थिरता की निशानी नहीं है, चेतनता अलग चीज है, यहाँ एकाग्रता की बात चल रही है या साक्षी भाव। शरीर में कोई भी हलचल बहुत ज्यादा है, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में भी कहा है आसन जयी बनना, अर्थात एक ही आसन में कोई 3 घंटा अगर बैठ सके उसे आसन जयी कहा है, परंतु वो हठ योग है। परंतु हाँ, योगी की वो साधना का भी एक अभिन्न अंग है। यदि कोई योग में बैठा है, कोई संगली पर बैठा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो सामने वाले तो क्या सोचेंगे कि बाबा ने तो कहा है शरीर का तो कोई लेना देना नहीं, ऐसा सोचेंगे कि ये सोचेंगे कि ये स्थिर नहीं है, सहज राजयोग, ऐसा नहीं सोचेंगे, सबको पता है फिर भी नहीं सोचेंगे, सोचेंगे इसकी बुद्धि बहुत भटक रही है, ये हलचल में है बहुत, कोई पैर इधर कर रहा है फिर इधर करेगा, फिर इधर होता है फिर उधर होता है, फिर पैर नीचे करता है फिर ऊपर करता है, फिर नीचे करता है फिर ऊपर करता है, फिर एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, ऐसा योग करा रहा है एक व्यक्ति, तो क्या कहेंगे स्थिर है? चेतना की निशानी है, चेतनता की निशानी अपने कान, क्या कहेंगे? कोई ऐसा योग कर रहा है, एक है व्यक्ति जो ऐसा मेडिटेशन ग्रुप लीड कर रहा है। साक्षी की सबसे पहली जो साधना है वो देह के तल पर है कि देह को कितना हम स्थिर करना, या फिर स्थिर न भी हो तो उसे देखना, और वो शरीर इन आंखों से नहीं मन की आंखों से, वो पहला तल है। दूसरा तल है विचारों का तल, अपने ही विचारों को देखना, उन्हें रोकना नहीं, उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं, केवल देखना, जो आ रहे आने दो, जो जा रहे जाने दो। किसी को कहने को कहो तो बहुत मुश्किल काम है ये, परंतु यदि इसका अभ्यास किया जाए तो पाया जाएगा कि धीरे 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 विचार कम कम होने लगेंगे। रोज 1 घंटा बैठकर, 1 घंटा 15 मिनट, जेन में कहावत है, उसमें कहा है कि रोज 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। हाँ यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर 1 घंटा करना चाहिए। कहावत क्या है कि यदि आपको रोज 20 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है, परंतु हाँ कोई बहुत ज्यादा बिजी है और उसके पास समय नहीं है तो उसके लिए फिर 1 घंटा उसको करना चाहिए, ऐसी कहावत है, पैराडॉक्सिकल। वो कैसे नहीं, वो करना है तो दूसरी साधना है, दूसरा तल है साक्षी का, अपने ही विचारों को साक्षी होकर देखना। एक दिन कल कुछ दिन पहले एक भाई मिले थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कैंसर रोड में कि कभी कभी ऐसे ही बैठ के देखता रहता हूँ क्या आ रहा है विचार, कि इतना ज्ञान योग इतनी क्लासेस सुनते रहते हैं कराते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं पढ़ते रहते हैं चिंतन करते रहते हैं सब करते हैं, जैसा तीव्र पुरुषार्थी जो कुछ करना चाहिए सब करते हैं, और कभी कभी बैठ के खाली ये देखता हूँ कि इतना कर तो रहा हूं पर अभी खाली बैठता जब हूं तब क्या विचार आ रहे हैं, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। दिन रात सुबह मुरली पढ़ी, फिर पढ़ा, फिर रिवाइज किया, फिर क्लास कराया, फिर या तो क्लास सुना मुरली, फिर प्रोग्राम कोई किधर गए सब किया, ज्ञान योग से संबंधित योग शाम को किया, सुबह किया, दोपहर में भी किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, सब किया, पर कभी कभी बैठकर ये देखता हूं कि मन में क्या आ रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, और देखकर कितना आश्चर्य होता है कि क्या क्या आ रहा है, इतना सब करने के बाद भी क्या क्या आ रहा है। तो यहां पर साधना है ये विचारों को देखने की, जैसे मैं हूं ही नहीं विचार, ये जो तल हम बता रहे साक्षी के, हम वो है ही नहीं, वो मन जो है जो विचार कर रहा है ये मैं हूं ही नहीं, वो अलग मैं अलग, ये दूसरा तल है, तो इसकी साधना करनी है। तीसरा तल है भाव का तल, तीसरा तल है भावनाएं, कौन सी भावनाएं आ रही है। ऊपर से हम विश्व कल्याण करें परंतु उस विश्व कल्याण उस शुभ भावना के अंदर कहीं कुभावना तो छिपी हुई नहीं है। कहने को तो हमने नारे बहुत लगाए हैं, हम मैं विश्व कल्याण करी हूं, मैं विश्व कल्याण, परंतु विश्व कल्याण की भावना के पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है। ऊपर से जो ब्रह्मचर्य है कहीं वो काम का ही वस्त्र तो नहीं ओढ़ा हुआ है। बाहर जो सत्य है कहीं वो असत्य नहीं तो असत्य का असत्य नहीं सत्य का रूप तो नहीं धारण कर रखा है। बाहर जो प्रेम है अंदर के मोह नहीं तो मोह की आड़, मोह ही प्रेम, मोह की आड़, प्रेम की आड़ में क्या है, मोह है। दूसरों को जब देखे तो हम क्या निर्दोष है दूसरे, परंतु स्वयं को देखे तो उसमें जो पॉजिटिव संकल्प है जो भी, उन पॉजिटिव के नीचे कहीं कुछ निगेटिव तो नहीं, जो कहा काम ने स्वयं को छिपाने के लिए ही तो ये ब्रह्मचर्य ने धारण कर लिया ऊपर से। साक्षी होकर भावों को चेक करना, केवल देखना क्या भाव है, जो तरंगे उत्पन्न हो रही है भावों की उनको साक्षी होकर देखना। अगर कोई ऐसा ही कहे कि मेरा तो सब अच्छा ही है, फिर क्यों अचानक एक दिन भावों का उद्वेग होता है और सब कुछ ढह जाता है। कोई कहता है मैं तो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं और अचानक एक दिन ब्रह्मचर्य क्यों टूट जाता है। कोई कहता है मैं एकदम प्रेम स्वरूप हूं, फिर क्यों अचानक एक दिन क्रोध आ जाता है, कहीं क्रोध नहीं प्रेम का आवरण तो नहीं ले लिया था, है था क्रोध नफरत पर प्रेम ओढ़े हुए था, प्रेम की आड़ में बैठा था, प्रेम के पर्दे के पीछे था। संन्यास मार्ग में कहते हैं अहंकार ने अपने छिपने के लिए जो घर निर्माण किया है वो है समर्पित जीवन। अहंकार के लिए वो सबसे सुरक्षित स्थान है, परंतु क्योंकि वहां पर कोई कभी नहीं ढूंढेगा उसे, क्योंकि समर्पण का नाम ही है विलीन होना मैं को, और अहंकार ने अपना घर भी उसी को चुना है। अहंकार ने अपना घर चुना है श्वेत वस्त्र को, अहंकार ने अपना घर चुना है बैच को, क्योंकि वहां वो सबसे अधिक सुरक्षित है, वहां वो पाए जाने की संभावना ही नहीं है, और उसी ने स्वयं को वहीं छिपा के रखा है। क्योंकि समर्पण नाम है उसके, समर्पण नाम ही उसका है, परंतु उसने छिपाया भी अपने आप को वहीं है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वहीं वो पनपता है, और जिसने उसको धारण किया है उस जीवन को वस्त्र को बैच को या बाहरी कोई भी निशानी को, श्वेत वस्त्र गेरुवे वस्त्र, उसी की आड़ में वो छुप के अपना कार्य करता है और साधक को भी पता नहीं चलने देता है। जो जिसने धारण किया है उसको भी पता नहीं चलने देता। तो तीसरा तल है भावों का तल। क्या भाव आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं? भावों में पवित्रता के साथ अपवित्रता तो जुड़ी हुई नहीं है, क्या क्या है उसमें, और उसके साथ झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। कोई हो जिसने बहुत विश्व कल्याण के काम करे, अगर वो बैठ जाए तो देखेगा अंदर से घृणा निकल रही है, आश्चर्य होगा देखकर ये क्या हो रहा है, परंतु है, क्योंकि उसका जन्म शायद इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में हुआ होगा और वो घृणा चालू है, चलती जा रही है संस्कारों के द्वारा। तो तीसरा तल है भावों का तल। चौथा तल है साक्षी, साधना का चौथा तल है। इसके पीछे और कोई तल नहीं है, क्योंकि यही देख रहा है ये सब कुछ, देह, विचार, भाव और यहां साक्षी। और साक्षी कहो या इसको कहो अवेयरनेस, जागरूकता, संपूर्ण जागरण का ये तल है चौथा। चौथा आयाम जो है साधना का वो है संपूर्ण जागरण। संपूर्ण जागरण में होश है, संपूर्ण होश, व्यक्ति होश में है। और ये तीन तल सामने के और लास्ट जो है वो जागरण। अब तीन तलों के द्वारा संसार में तीन तरह की साधना है और साधना हर एक के अपने अपने हिसाब से है। जैसे पहली साधना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक औषधि है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को औषधि देता है कि ये औषधि हनी शहद के साथ ले लेना घोल के। वो कहता है मैं शहद लेता नहीं हूं, मैं जैन धर्म से हूं, शहद मांसाहार है, मैं हनी लेता नहीं हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम उसको एक काम करना दूध के साथ ले लेना। वो कहता है मैं वीगन हूं, क्वैकर क्रिश्चियन, एक कम्युनिटी होती है क्रिश्चियनिटी में भी क्वैकर क्रिश्चियंस जो दूध नहीं लेते क्योंकि उसको वो नॉनवेज समझते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम फिर पानी के साथ ले लेना। ऐसे तीन प्रकार के साधक है। पहला साधक ऑपरेट करता है देह के तल पर, कर्म योग। वो कहता है ये योग भी मेरे से नहीं होगा, बैठ के काम बताओ, सेवा जो भी होगा हम कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, बुद्धि का जिसमें काम ना हो ऐसी बताओ कुछ काम, जिसमें ऐसा बैठना और ये लेक्चर देना और ये चिंतन मनन हमारी बुद्धि का काम ही नहीं है। हमारी ना तो इतनी पढ़ाई है, ना तो बुद्धि है, ना तो हमको बोलने का वो है, और उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। फिर वो उसके दूसरे कारण है, उससे नुकसान क्या क्या है वो भी बता सकते हो लोग। तो वो जो तल है, हाँ पर वो भी है, उसे कहा जाता है कर्म को योग के साथ जोड़ना, तो कर्म योग। दूसरे है विचार का तल, ज्ञान योग। दूसरा जो तल है ज्ञान का तल है, विचार, ज्ञान और योग। ये जो है ये बुद्धिमान व्यक्ति है, तर्कवादी, लॉजिशियंस, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण है, इसमें क्या कहा उसमें क्या कहा, ये क्या कहता है वो क्या कहता है, बाबा ने क्या कहा, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये विचार का तल है। उस विचार को योग से जोड़ना ज्ञान योग, ज्ञान और योग। पहला कहा कर्म योग। पहले ये दूसरे वाले वो कहते वो हमसे कर्म वो सब नहीं होगा, बुद्धिमान बुद्धिमानी का कोई काम हो तो बताओ, भाषण कहीं देना है तो आई एम रेडी, भाषण ठोकना है कहीं तो धुआंधार भाषण कर देंगे एकदम पावरफुल, अमृत वेला पर, चाहे खुद अमृत वेला करता हो ना करता हो उससे कोई लेना देना नहीं। यह है विचार का तल। तीसरा तल है भावना का तल, भक्ति योग। प्रेम का तल प्रेम योग, भक्ति योग प्रेम योग। ये इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत भावना संपन्न है, भावुक है, जिनको बस बाबा से प्यार है, बहुत प्यार है, पर ये सब मत बताओ, ये होमवर्क और ये सब लिखना और ये कविता और ये गीत और मतलब लिखने का, और जिसमें बुद्धि चले, चार एग्जाम्पल यहाँ के और कॉन्ट्रास्ट मेथड और ये एग्जाम्पल मेथड, ये सब तो बाप रहते, दिमाग ही भारी हो जाता है, ज्ञान योगी रहे, इसका टेंशन ही इसका रहता है, बाबा से ही योग टूट जाता है ये करते करते। सेवा भी नहीं चाहिए, बस भाव, भाव का जगत है। जैसे पहले वाले ने कहा कि मैं तो शहद नहीं पीता, नहीं ले सकता, परंतु महत्व शहद, महत्व दूध या पानी का नहीं, औषधि कुछ और है, ये तो माध्यम है, इसके द्वारा दे रहा है, औषधि है योग, जिसको जो है वो उससे करे। कर्म के साथ लेना है तो कर्म के साथ लो, ज्ञान के साथ लेना है तो ज्ञान के साथ लो, भक्ति के साथ लेना है, भाव के साथ लेना है, प्रेम के साथ लेना है तो प्रेम के साथ लो, ये मीडियम है, उसके साथ वो औषधि जा रही है पेट में। तीसरा तल है भाव का, भावना का। चौथा भी एक तल है, कोई चाहे तो ये तीनों ही तल एक साथ प्रयोग कर सकता है। शहद के साथ भी कभी दवाई लेगा वो, उसको शहद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वीगन भी नहीं है तो दूध भी ले सकता है, पानी तो ले ही सकता है, तीनों है। तो कभी कर्म के क्षेत्र में, कर्म में है तो कर्म योग, विचार कर रहा है तो विचार, तीन अलग अलग रीति से भी जा सकते हैं उसी लक्ष्य तक, क्योंकि दवाई पेट तक पहुंचेगी, और अलग अलग समय पर अलग अलग भी ले सकते हैं। तो कभी कर्म के द्वारा, परंतु कर्म में भी योग, तो कभी भाव का तल, भक्ति योग, प्रेम योग जिसको कहते हैं, तो कभी ज्ञान का तल, वो ज्ञान का भी, ज्ञान का ही चिंतन हो रहा है। इसके लिए ज्ञान किसका है? एक कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक मुरली थी ना, बाप को याद करना और बाप के याद, ज्ञान को याद करना, फायदा किसमें ज्यादा है? बाप के ज्ञान को याद करने में फायदा ज्यादा है, साकार महावाक्य है। तो और एक दूसरी मुरली है जिसमें कहा था बाबा ने, बाप को याद करना या बाप को ज्ञान को याद करना एक ही चीज है, ये भी साकार महावाक्य है, बाप को याद करना या बाप के ज्ञान को याद करना, तो वो भी योगी है एक रीति से, ज्ञान का तल, तीसरा भक्ति का तल, तीनों भी मिक्स किए जा सकते हैं। और चौथा जो तल है वो है साक्षी की तल, वो सीधा इस यहां पर भी उतरा जा सकता है, सीधा स्ट्रेट, इन सबको बाईपास करके, सबको साक्षी होकर जैसे ही आत्मा देखने लगती है ऑटोमेटिक डिटैच हो जाती है यहां से, और वो सब कुछ अपने आप होने लगता है। या फिर साक्षी का ये तल तीनों ही तलों में समाया हुआ है, अगले तीन तलों में, कर्म करते हुए भी साक्षी, ज्ञान योग कर रहे पर उसमें भी साक्षी, भक्ति कर रहे, भक्ति अर्थात प्रेम योग, भावनाएं, परंतु उसमें भी साक्षी का अभ्यास। तो ये चार अलग अलग तल है। यहां बाबा क्या कह रहे हैं, साक्षी होकर सर्वात्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए, कोई भी पार्ट को देख, ऐसा क्यों की हलचल होती है? दादी दादी से मुलाकात है, हलचल ये तीनों तलों पर हो सकती है, कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में अर्थात प्रेम में, परंतु चौथा जो तल है वो साक्षी का तल है, उसमें केवल देखना है। उस दिन कहा था ना, तीन प्रकार के लोग हैं संसार में, एक है दृश्य, कब कहा था, इंग्लिश क्लास में कहा था शायद, इंग्लिश क्लास में, एक है दर्शक, एक है दृश्य, एक है दर्शक। दृश्य वो आत्माएं हैं जो दूसरों को दिखाना चाहती है, जो स्टेज पर है और स्टेज पर रहना चाहती है और शो ऑफ करती है, जो भी वो करेंगे उसका शो ऑफ, उन्हें कहा जाता है दृश्य है, ये सब कुछ शो के लिए है, क्लास में जाना, योग करना, आगे पीछे घूमना, बड़े आगे आगे करना, दिखाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सारा जो कुछ है, हाँ वो है, परंतु ड्यूटी में दिखावा, जैसे जैसे उदाहरण दिया था एक बार, एक व्यक्ति जन्मांध था, जन्मांध बॉर्न ब्लाइंड। अब हिप्नोटिक रिग्रेशन किया गया, हिप्नोटिक रिग्रेशन से उसको पिछले बर्थ में लेके गए, सिक्स्थ बर्थ, आज से छठवां बर्थ, जाति स्मरण, पीछे 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 पीछे, वहां पे पता चला वो जल्लाद था। राजा कहता था कि आंखें फोड़ो, तो वो हाँ उसको सलाखों से आंखा फोड़ता। अब उसका वो ड्यूटी है, ड्यूटी का कोई पाप नहीं है, ड्यूटी कर रहा था, पर करते करते उसको बहुत मजा आता था उसमें।
अपने काम को तो
हंसी से करना, खुशी से करना एक बात, परंतु सैडिस्टिक प्लेजर्स, कल कहा था सैडिस्टिक प्लेजर्स, दूसरों को सताने में जो अद्भुत सुख का अनुभव होता है वो उसमें अनुभव करता था। खुशी से करना, कर्तव्य निष्ठ होके, कर्मवीर होके करना, कर्मठ रहना, वो अलग बात है। सक्रिय होकर करना, कर्मवीर बहुत अच्छी निशानी है, परंतु सैडिस्टिक, सैडिज्म उसमें बहुत बहुत, जैसे एक बार तो लगा दिया, वापस वापस करना, फिर उसको एक बार तो मार दिया किसी को, वापस वापस चाकू से उसको मारना। हाँ तो ये जो है ये सैडिस्टिक प्लेजर्स में आता है, तो वो कारण था, मतलब सूक्ष्म कारण जो बताते हैं ये। तो और एक दूसरी बात इससे संबंधित नहीं है, पूर्व जन्म की स्मृतियां क्यों आवश्यक है? वैराग्य के लिए, ये एकमात्र कारण है। इस संसार में दो ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हिप्नोटिक रिग्रेशन का, मतलब जिसको कहेंगे पाठ, संसार को पढ़ाए, महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर। जाति स्मरण यहां पर ही आता है इन दो धर्मों में, कि पूर्व जन्म में हर एक साधन को, साधक को अधिकार है कि ऐसी कोई क्रियाएं करे कि अपने सारे जन्म देख ले, जन्म भर सारे जन्म देख लेगा तभी उसको वैराग्य आएगा, देखेगा कितनी बार वही वही सुख, वही वही भोग, वही वही उत्तेजनाएं, वही संसार, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, ये सब देख ले जब व्यक्ति, तब उसको वास्तव में रियल वैराग्य आता है। इसके लिए अपने जन्मों को जानना आवश्यक है, ये उन्होंने कहा है, ये एकमात्र कारण है। कब तक करेगा व्यक्ति फिर वही 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 वही, इतना जब देख लेगा, पिछले जन्म में तो यही किया था, तब भी शादी की थी, तब भी बच्चे थे, और तब ये हाल हुआ, अब फिर से निकला है संकल्प करने, जब उसको दिखाई दे सारा तो जाएगा क्या उसमें, सारा दिखाई दे, पूरा ये है तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको, चिट्ठा, चिट्ठा पर्चा, जन्म जन्म का चिट्ठा पर्चा, ये है, पिछली बार भी गए थे यही किया था, अब ये हाल है। उम्मीद, आश, होप है पॉजिटिव वर्ड, परंतु दुख का कारण ही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति ये आश धरे रहता है कि इस बार ठीक हो जाऊंगा, इस बार शायद कोई अच्छा मिल जाए, एक बार तो नहीं मिला, दूसरी शादी, तीसरी बार नहीं मिला, चौथी बार फिर भी आश धरे रहता है, यही आश्चर्य है, या? यही दुख का कारण है। इसके लिए महावीर और बुद्ध ने कहा है, अपने जन्मों को साधे साधक देखे, हर एक हकदार है, हर एक अधिकारी है अपने जन्मों को देखने का। जाति स्मरण की प्रक्रिया जैन धर्म में विधिवत दी हुई है, कैसे कैसे करे तो जाति स्मरण हो जाए, तो उसका उद्देश्य भी उन्होंने एक ही बताया, बस यही, बाकी और कुछ नहीं, देखो तो अभी वैराग आएगा, नहीं तो कैसे वैराग आएगा, करते रहोगे वही वही वही, भागो इसके पीछे उसके पीछे, जब पता चलेगा इसके पहले भी 10 बार भागा था और मिला हाथ में कुछ भी नहीं, जैसे जैसे एक व्यक्ति है आज फिल्म देखने गया, उसको कहो कल तुमको वही फिल्म कल देखनी है, चलो देख ली, तीसरे दिन कहो फिर से वही फिल्म देखनी है, वो कहेगा अब नहीं देख सकता मैं, बस बोरिंग है, पुलिस लगा दी उसके पीछे, तुम्हें देखनी है, तीसरे दिन, चौथे दिन, दसवें दिन, 25 बार उसे वही फिल्म देखने को कहा, वो तो पागल हो जाएगा, परंतु एक कंडीशन में वो पागल नहीं होगा, उसे रात में अफीम पिला दी जाए, ऐसा भुलावे का कोई चीज दे दी जाए, तो फिर से सुबह तैयार हो जाएगा फिल्म देखने के लिए। मृत्यु वह अफीम है, जन्म मृत्यु सब भुला देती है, फिर से वही चालू करता है व्यक्ति, वही फिल्म वापस देखना चालू करता है, फिर अफीम पिलाई जाती है, फिर से वही देखना चालू करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख मन, अभी गोविंद को भजो, कब तक लगे रहोगे, वही 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 फिर से कर रहे हो कब तक वही 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 दिखाई दे जाए कि ये अफीम जैसे है, तो ये चक्र है, चाक घूमता रहता है घूमता रहता है। हम वहां नहीं थे, हम थे साक्षी पर, तो वापस आ जाओ, साक्षी होकर देखना, इंटरफियर नहीं करना, ये साधना है, इसकी साधना करना, देह को देखना, विचारों को देखना, भावों को देखना, और जागरण में रहना, होश में रहना, संपूर्ण होश। क्योंकि एक ही दिन में कितनी बार हम बेहोश हो जाते हैं, मैं अपने आप को देखता हूं, मुझे लगता है जैसे हॉस्पिटल गए कि बेहोशी चालू, और सीधा 5 बजे होश में होश आता है, फिर अब बाद में आता है, मैं 1 बजे आ जाता है, वहां जो कुछ होता है सब बेहोशी, और फिर होश आता है, फिर वापस बेहोश, फिर होश, फिर बेहोश, फिर होश, फिर बेहोश। हाँ, बेहोशी अर्थात साक्षी भाव की बेहोशी, बेहोशी यहां अर्थात आध्यात्मिक बेहोशी, वो बेहोशी अर्थात एकदम बेहोशी तो नहीं कहेंगे, होश बेहोश, होश बेहोश जो सेकंड अवस्था है चेतना की, जबकि अभ्यास कर रहे हैं, ये भी आत्मा ये भी, मतलब जो कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ कर्म कहो उसको, जो भी जिस जो भी हम कहते हैं श्रेष्ठ कर्म है वो हो रहे हैं, परंतु फिर भी एक सूक्ष्म तल पर जो जागरण की अवस्था सुबह है या भी है, कर्म में जाते ही वो जो कंप्लीट साक्षी कहो या जागरण कहो, वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, परंतु हो जाएगा, आशा है, होश तो आ जाएगा। तो साक्षी होकर सर्वात्माओं का पाठ देखना, प्रश्न नहीं ये क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि ये खेल है, ये खेल है, इसे लीला कहा है, लीला इज फॉर एंजॉयमेंट। ये क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये करेंगे तो कैसा होगा। लक्ष्मण यदि कहे कि ये रावण इतना जोर से क्यों हंसता है, इसको नहीं हंसना चाहिए इतना जोर से, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड रावण के इतना जोर से हंसने से, परंतु लक्ष्मण को जब समझ में आएगा कि इसका पार्ट ही ऐसे हंसने का है, अट्टाहस करने का, इस तरह लाफ्टर का उसका पार्ट है, नहीं तो उसके मन में सबसे ज्यादा प्रश्न रामायण में लक्ष्मण के मन में ऐसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों। राम एक ऐसे है कि उसको कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी भी बारे में कोई प्रश्न नहीं है उसके, वो संपूर्ण साक्षी है। इधर कृष्ण को देखो, संपूर्ण साक्षी है हर चीज में, हर चीज में साक्षी है, शुरुआत से लेके तो लास्ट तक, कहीं पर भी वो ये नहीं कहता इसने ऐसा क्यों किया उसने वैसा क्यों किया, उसको कोई आश्चर्य नहीं लगता है किसी बात का, कोई कभी उसके कभी हलचल में देखा क्या, राम को तो भी कभी कभी आया है, परंतु ये तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बात में कहीं पर भी हलचल दिखाई नहीं है उसकी, हर चीज जैसे उसे पहले ही पता है, ये जो बाबा कह रहे ना क्वेश्चन मार्क, सब नया कुछ भी नहीं है, ये पहले ही होने वाला था, ये पहले ही पता था ऐसा है, आगे क्या होने वाला है वो भी पता है, अभी जो हो रहा है वो भी पता है, पीछे क्या था वो भी पता है, और हर एक को त्रिकाल की दृष्टि से देखता है, एक एक को, शिशुपाल को भी वैसे ही देख रहा है, और जयद्रथ को भी वैसे ही देख रहा है, हर एक को देखने की सबसे बड़ी तो कर्ण को कैसे रूप से देख रहा है, उसको उसका सब कुछ पता है, फिर भी सब कुछ साक्षी होकर दिख रहा है। तो साक्षी की यह साधना, इसका मतलब यह भी नहीं, जैसे किसी ने उस दिन कहा था कोई डूब रहा है तो मैं तो साक्षी हूं, ये साक्षी की साधना नहीं है। हाँ, उसका तो पार्ट ही है, उसको डूबने दो, ये साक्षी भाव नहीं है, इसको साक्षी नहीं कहेंगे। साक्षी अर्थात कर्म तो करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, परंतु वो करते हुए साक्षी, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत बड़ी बड़ी मुरलियां है इसके ऊपर, वो सब समाया रहेगा उसमें, परंतु मनुष्य का स्वभाव है पॉजिटिव की ओर ज्यादा झुक जाता है, खींचता है उसको पॉजिटिव, परंतु साक्षी में पॉजिटिव की ओर भी नहीं झुकना होता है, न्यूट्रल वाली स्टेज है, नहीं तो पेंडुलम का स्वभाव है, ऐसा जाता है फिर ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, माइंड का भी ऐसा स्वभाव है, बहुत पॉजिटिव हो जाता है तो कभी बहुत निगेटिव हो जाता है, बहुत प्रेम में भर जाता है तो बहुत एकदम घृणा से भर जाता है, एकदम वैराग आ जाता है संसार से, सोचता है बस अभी बहुत हो गया संसार, और दूसरे पल देखो तो एकदम आसक्त, किसी ने हर्ट कर दिया, दुखी कर दिया, एकदम वैराग उस व्यक्ति से, फिर उसने अच्छा बोल दिया, फिर एकदम ही प्रेम, अच्छे से बात किया, अच्छे से व्यवहार किया तो वही चाहिए, और बिल्कुल झटक दिया तो उससे ऐसा वैराग कि फोन नंबर डिलीट। हाँ, गुरु और जब से फिर से दोस्ती, प्लीज ऐड। क्या है ये, है क्या खेल है ये? इसलिए लक्ष्य ना तो पकड़ना है ना तो त्यागना है, लक्ष्य है साक्षी, ना तो इधर ना तो उधर, क्योंकि इधर जाने में तो, क्योंकि हमारा जो मन है एकदम निगेटिव की तरफ नहीं जाता है, ज्यादा पॉजिटिव में ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, पॉजिटिव करना है उसको, पॉजिटिव 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 थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग करते करते पॉजिटिव में ही अटक जाता है, ये उसके ऊपर बाबा की कैसी स्टेज है। बाबा यदि बहुत भावुक हो जाए तो वो बोलेंगे अभी मैं तो कैसे जाऊं, अभी मैं इनको छोड़ के, ये बैठकर गीत गा रहे हैं, अभी ना जाओ छोड़कर। बाबा कहेंगे अभी बाप रे मेरे से तो बहुत भारी हो रहा है, पर कैसे जाता है वो, कोई लेना देना नहीं, आउट पूरा एकदम गया, गीत बजा तुम्हारा प्यार वो बाबा भी गीत बज रहा है और कब चला गया पता ही नहीं, कैसी अवस्था है उसकी। तो जैसे वो वैसे हम, फोटो कॉपी, मधुबन मशीन है फोटोस्टैट और तुम हो फोटो कॉपी। अगले संडे की मुरली। ओम शांति।